نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير روح القرآن پارا نمبر ایک کنٹینیو کریں گے ابھی تک جو کچھ ہم کر چکے اس کا تھوڑا سا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس کے جواب میں سورۃ البقرہ کھل گئی الف لام میم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہ اگر واقعی تمہیں ہدایت چاہیے اس ہدایت کو تم کتاب سے لوگے گویا کہ قرآن پاک ہدایت پانے کا یا ہدایت لینے کا بہترین ذریعہ ہے اس کے بعد ابھی تک ہم نے شروع کی 27 آیات 1 to 27 میں ہدایت کے اعتبار سے چار مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا پہلی 5 آیات میں متقین کی بات تھی الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے اولئک هم المفلحون تک گول یہ ہے بینگ اے مسلم آپ کا میرا گول کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے اور رمضان کے روزوں کا بھی یہی مقصد ہے لعلکم تتقون کی صورت میں پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ ہے وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کو پیغام پہنچ گیا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ناشکرہ چھپانے والا عربی زبان میں رات کو بھی کافر کہتے ہیں اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی رحمتوں کو قدرتوں کو چھپانے والا شخص پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک ہم نے تیسرے گروہ سے ملاقات کی جن کو نام لیے بغیر یہاں منافقین کہا گیا یہ کون ہے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے اوپر سے اچھا بنتے ہیں اندر سے خراب ہیں اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اندر سے ان کی ہمدردیاں غیر اسلام کے ساتھ ہوتی ہیں اور دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفاق کی دو قسمیں بھی بتا دیں ایک قسم کے منافق وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہی اسلام کی محبت نہیں ہوتی وہ اپنے کسی ذاتی فائدے یا کسی اور غرض کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ تو جیسے آئے ویسے نکل گئے لیکن دوسرا گروہ جن کو آپ عملی منافق کہہ سکتے ہیں ان کے دل میں اسلام سے محبت بھی ہوتی ہے وہ اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن سست ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ پہ کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدے ان کے اندر ہوتے ہیں اور اس میں یاد رکھیے کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے عمل میں کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عملی منافق کہا ہے اصلاح کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک ایک رکوع جس میں پورے مکی قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ دیکھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے آیت رکوع شروع ہوا تھا جس میں اللہ نے انسانیت کو پکارا گویا کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے اور آخر میں فاسقین وہ لوگ جو کسی بھی معاشرے کے مچھر ہوتے ہیں بہت حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں مچھر کی بات کیوں ہے کہ ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضہ تو کیا پتہ چلا کہ کسی سوسائٹی کا خون نچوڑنے والا طبقہ وہ گروہ ہے جو سر عام فحاشی پھیلائیں جو سر عام نیوڈیٹی پہ کام کریں فحش ان کی زندگی کا مقصد ہو تشیع الفاحشہ ان کا مقصد ہو اب یہاں سے آج آگے ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اللہ تعالی نے آپ کے میرے تعارف کروانے کے بعد اب ہمیں جس چیز پہ لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے حقیقت زندگی تو آئیے ذرا آج کی آیات آیت نمبر 28 سے دیکھتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز اختیار کیا کئی فتق فرون اب اللہ وکن تم امواتا فحیا کم ثم یمیت کم ثم یحیی کم ثم الیہ ترجعون پھر آخر تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم کبھی سوچو تو صحیح دیکھیں تھاٹ پروکنگ سٹائل ہے سوچ ابھارنے والا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ تم اللہ کا کفر کر کیسے سکتے ہو وہ عدم سے تم کو وجود میں لانے والا ہے تم تو مردہ تھے پھر فاحیاکم پھر اس نے تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر وہ تم کو مارے گا اور ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اگر آپ دیکھیں تو اس میں انسان کی زندگی میں مختلف حالات میں جو مختلف چیزیں پیش آئیں اس کا تذکرہ ہے हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में आने से पहले हम सब मुर्दा थे, हम रूहों की शक्ल में थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मिट्टी से बनाकर उसके अंदर रूह जो फूंकी थी, तो आज इंसान उसी नस्ल से आगे चलते आ रहे हैं। और इसमें क्या पता चलता है कि जब एक इंसान इस दुनिया में आता है, आप और मैं इस वक्त सेकंड फेज ऑफ लाइफ है, पहला आलमे अरवाह था, हम सिर्फ रूहें थे, आज हम जिस्म और रूह का मजमुआ है। फिर हमारी मौत आएगी, हम अल्लाह ताला हमें अपने हुक्म से जब चाहेगा ले जाएगा, फिर कब्र की जिंदगी और उसके बाद फिर अबदी जिंदगी, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। कभी हकीकत के ऊपर इंसान गौर करे तो आपका मेरा इस दुनिया का सफर कितना को है, 60-70 साल एक एवरेज एज है उम्मत मुस्लिमा की। आज इंसानों ने अपनी जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश भी कर ली, लेकिन आप देखिए कि बिलाखिर मौत है। हम आलमे अरवाह में एक तवील अरसा रहे और इसके बाद आप देखिए कि इस दुनिया में 60-70 साल, और उसके बाद कब्रों में न जाने कब तक रहेंगे। आज भी आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो लोग दुनिया से गए, वो कब्र में, आलमे बरज़ख चल रहा है। इसका इस दुनिया के 60-70 साल से तो कोई रब्ती नहीं बनता, और आखिरत हमेशगी की है। तो कितनी न समझी होगी कि यहाँ चंद सालों के फायदे पाने की खातिर हम अपना अंजाम खराब करें। तो अल्लाह ताला आपको मुझे जिंदगी की ये हकीकत बताकर क्या कहते हैं कि कभी गौर तो करो, कुछ मजीद एहसानात अल्लाह ताला के। हुवल्लज़ी खलकलकुम मा फिल अर्दी जमीया, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ जमीन में है। तुम मस्तवा इलस्समाई, फिर खुद आसमान की तरफ करार पकड़ा, फसव्वाहुन्ना सब असमावात, फिर उसको 7 आसमानों में ढाल दिया, यानी सारा जहां तेरे लिए और तू मेरे लिए। हकीकत है कि इस कायनात की हर चीज इंसान के लिए। आप किसी किंग का क्या तसव्वुर करते हैं, किसी सदर, वजीर, मशीर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की क्या आपकी नज़र में हैसियत है? आप तो इस दुनिया के मिनिस्टर हैं। आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सब कुछ दिया, जमीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख़्खर की। हर रोज़ सुबह होती है सूरज निकलता, ये आज का सूरज किसके लिए निकला? बारिश सुबह किसके लिए हुई? ये चांद का निकलना, घटना, बढ़ना किसके लिए है? ये समंदर के ज्वार भाटे किसके लिए हैं? ये रंग बिरंग के फल और सब्जियां और अनाज और गल्ले किसके लिए हैं? खलकलकुम मा फिल अर्दी जमिया, क्या आपको अपनी हैसियत का एहसास हो रहा? क्या दिल में तशक्कुर के जज्बात उभरे? मुझे तो ऐसे लगता है कि शौहर बड़ा खूबसूरत सा घर बनाकर, उसको बड़ा अच्छा सा सजाकर बीवी को कहता है, बेगम ये सब आपके लिए है। कभी आप अपने बच्चों को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हैं तो पूरा घर बनाकर या गाड़ी खरीद कर उसकी चाबी देते हैं, कहते हैं कि बेटा ये गाड़ी आपकी है, ये फ़ोन आपका है। ये जो ओन करने की कैफियत है, ये आपके मेरे लिए बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने सब कुछ आपको मुझे दिया बग़ैर किसी बिल के, बग़ैर किसी टैक्स के। आज तक आपको ऑक्सीजन का बिल आया? टैक्स मिला आपको किसी चीज़ पे? और अगर बारिश के कतरों पे भी टैक्स लग जाता, सांस की एक आनी और जानी पे भी कोई चार्ज होता, तो हम कंगाल हो चुके होते। दुनिया में तो हर चीज़ हमें किसी न किसी चीज़ के बदले में चाहिए होती है। तो आपका मेरा फिर इस वक्त अल्लाह ताला को पे बैक करने का तरीका क्या है? इय्याका नाबुदु और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र के जज्बे जो है ना, ये बिल को पे करना है, ये इस चीज़ का इजहार है कि अल्लाह वी ओव यू, अल्लाह ताला मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, और ये आ का ना बुदू वही आ का नस्तहीन करके आप कहते हैं अल्लाह मैं तो यही पे कर सकती हूँ, अल्लाह मेरे पास तो है ही इतना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देख रहे होते हैं कि किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, चीज़ जो वो आपसे ले रहा है वो महंगी है। आपका अपना बच्चा भी कभी कभी ऐसा करता है कि उसको कोई खिलौना चाहिए होता है, और वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी में से जमा करता है। अब वो चीज़ है कि महंगी से महंगी होती जा रही है। एक दिन आपको उस बच्चे पे बहुत प्यार आता है, बच्चे की जेब में एक बड़ी मुश्किल से 500 से 600 रुपए जमा हुए, आप कहते बेटा आप ये दीजिए, ये ले मेरा कार्ड, बाकी मेरे से ले लें। बच्चा कितना शुक्र गुजार होगा ना उस वक्त। बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बच्चा कोई चीज लेना चाहता है और ले नहीं पा रहा। बस इसको मिसाल को अपनी आंखों में रख लें, मैं और आप अपनी इस दुनिया की जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे, मैं और आप तो छोड़ दीजिए बड़े बड़े वली पैगंबर, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लम को भी अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया था और आपने लोगों को बताया कि जब तक अल्लाह की रहमत नहीं होगी कोई जन्नत में नहीं जाएगा, उन पर भी अल्लाह की रहमत होगी, क्योंकि हम अल्लाह की बहुत सारी नेमतें ले रहे हैं। तो जो कुछ आप और मैं कर चुके वो हमें मिलेगा, उसके बदले में बाकी अल्लाह अपने पास से डाल देगा। फासिक नहीं बनना, रिबेलियस नहीं बनना, दिल का खोटा नहीं बनना। और अल्लाह ये सब कैसे करेगा? बहुवा बिकुल्ली शयइन अलीम। وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے. آپ اور میں اس وقت ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سب کو دکھ رہا ہے, لیکن آپ کی میری نیت کیا ہے, ہمارے اندر کیا چھپا ہوا ہے, یہ اس کو پتہ. نیتوں کا اخلاص وہ جانتا ہے. آپ میں سے کوئی بڑی سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا, میرا یہاں آ کر بات کرنا بہت آسان تھا, اللہ کو دونوں کا پتہ. آپ کا میرا اجر مختلف ہو سکتا ہے. سب سننے والے جو اس وقت بھی اس بات کو سن رہے ہیں, کوئی بڑی توجہ سے سن رہا ہے, کوئی بے دہانی سے سن رہا ہے, کسی نے بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح صرف آواز پلے کی ہوئی ہے, ساتھ اپنے کام بھی کر رہا ہے, کوئی بیچ میں فون کالز بھی لے رہا ہے. تو وا ہوا بکل شعین علیم, اللہ تعالیٰ کا ایک نام العلیم ہے. اور یاد رکھیے, قیامت کے دن ہمارا حساب صرف اللہ کی تین صفات کے ساتھ پورا ہو جائے گا, العلیم, السمیع اور البصیر. ہر دن میں آپ کو دعوت دیتی رہوں گی کہ آپ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی سیریز کو شروع کرتے ہیں, ہر روز کا ایک نام. اور رمضان کی گھڑیوں میں تو وقت بھی بہت ہے, اگر آپ رمضان میں یہ سیریز کرتے ہیں کوئی ایک گھنٹہ جس وقت آپ اور آپ کا رب, اور آپ اس کا ڈے ون شروع کر دیں, آپ کو اسی چینل پہ ملے گا, نور القرآن ٹی وی پہ بھی اور مائی نور القرآن پہ بھی. ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا, آپ کا دل نہیں کرے گا چھوڑنے کو, کیونکہ کبھی کبھی پورا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کو جانتے ہیں تو پھر آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. پھر انسان دیکھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا تو ہوں, تو میں تو نہیں چھپ سکتا. آج بھی آپ دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, لوگ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں جب کیمرے کا رخ اپنی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ سب آپ کا نظروں میں. تو آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں آپ نے میں نے ایسے جینا ہے, اور یہی تقویٰ ہے کہ اللہ آپ کو مجھے دیکھ رہا ہے. حفظ النفس اما یوسم, سوچ کے بولنا, سوچ کے دیکھنا, سوچ کے کھانا. میرا ایک کلک کل قیامت کے دن مجھے اللہ کی نافرمانی والے لوگوں میں جمع کر دے, میں فاسق میں نہ آ جاؤں. آپ ان چار لفظوں کو رٹ لیجئے, متقی بننا ہے, کفر سے دور سے بھی نہیں گزرنا, نفاق سے جان چھڑانی ہے, اور فسق تو بالکل نہیں کرنا. اب یہاں تک آپ سیکوینس فیل کر رہے ہیں؟ بس لوگ کہتے ہیں قرآن میں ربط نہیں ہے, کوئی ایک بات ہے تو کوئی دوسری بات ہے, ریکویسٹ سیکوینس بہت ہے. تو یہاں تک ہم آیت 1 سے 29 تک میں چار قسم کے گروہ انسانیت کے ہدایت کے اعتبار سے اور انسان کی زندگی کی حقیقت جان چکے. اگلا سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے, ہم کون ہیں, میں کہاں سے آیا ہوں, کیا انسان بندروں کی اولاد ہے, ڈارونزم کو سامنے رکھ لیجیے, آخر ہم کہاں سے آئے. چھوٹا بچہ بھی کبھی آسمان کے نیچے لیٹا ہو تو ماں سے پوچھتا ہے, ماما ہم کہاں سے آئے, اللہ کون ہے, ہم کدھر جائیں گے. اب ان سب سوالوں کا جواب آیت نمبر 30 سے 34 میں اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. قرآن پاک میں یہ قصہ تقریباً 9 دفعہ بڑی تفصیل سے ہے, مفصل ہے. چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں, کچھ باتیں آپ یہاں سمجھیں گے, کچھ آپ وہاں سمجھیں گے. یہاں لفظ خلیفہ کو سمجھ لیجئے. خلیفہ کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کے ماسٹر پلان میں حصہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کر کے جب لفظ خلیفہ رکھا تو اس سے مراد کیا تھا کہ دنیا میں اللہ کے نظام کو وہ امپلیمنٹ کرے گا, نافذ کرے گا. اب دیکھیے, خلیفہ کے پاس کچھ اتھارٹیز ہوتی ہیں نا, کچھ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں. ویسے تو سکسیسر کے معنوں میں لیں تو ایک کے بعد ایک آئے گا, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد پڑپوتا, اوپر دیکھے تو باپ سے اوپر دادا, دادا سے اوپر پردادا. یعنی سارے انسان اکٹھے نہیں بھیج دوں گا, ون بائی ون یہ انسان آتے جائیں گے, آتے جائیں گے. اور اگر خلیفہ کو یہاں لے تو جو بہت بڑا مقصد ہے, وہ جس کو کسی نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو اللہ تعالیٰ نے جو کریشن پلان بنایا اس میں انسان کو دی ٹاپ پہ رکھا. آپ دیکھیں, انسان سے خوبصورت مخلوقات بھی ہیں, مثلا آپ مور کو دیکھیں, پرندوں کو دیکھیں, چڑیا کو دیکھیں. انسان سے زیادہ جسے والی مخلوقات ہیں, مثلا ہاتھی ہے. انسان سے زیادہ طاقتور جانور موجود ہیں, شیر کو دیکھیے, چیتے کو دیکھیے, چیتا کتنا تیز بھاگ سکتا ہے. لیکن ولقد کرمنا بنی آدم, سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے, ہم نے آدم کو, بنی آدم کو عزت دی. تو عزت کیا تھی؟ عقل دی, شعور دیا, فہم دیا. ابھی اگر اس لفظ خلیفہ پہ آپ کی توجہ رہی نا, تو آگے جا کر ابھی تھوڑی دیر میں ہم لفظ امام کو بھی دیکھیں گے, लेकिन जहाँ मैं पैगाम दूंगी अपनी यूथ को, अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम और इब्लीस के इस किस्से में हमें जो बात बताई वो क्या है, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के नाम बता दिए। और वो कौन से नाम थे, वो कैसे थे, अभी इस पे अगर हम बात करेंगे, कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, फरिश्तों ने आजजी से कह दिया कि अल्लाह तू ही पाक है, हमें तो बस उतना इल्म है जितना आपने हमें दिया। क्या पता चला कि फरिश्तों की सिफात क्या हैं, इतात और आजजी। उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या कहा, व इस कुल नालिल मलाइकत इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस उन्होंने सजदा कर लिया, नो रिजेंटमेंट, नो इफ्स एंड बट्स, नो क्यू ए आंसर सेशन, क्यों करूं, क्या होगा, फ़र्ज है, सुन्नत है, हलाल है, हराम है, ना किया तो कितना गुनाह हो गया, ये है फरिश्तों की आजजी। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरिश्तों की असल बयान करके साथ ही कहा इल्ला इब्लीस। इब्लीस कौन था? फरिश्तों में आकर बैठा हुआ एक शख्स। वो कौन था, उसे मुझे आपको क्या लगे, बस हमें इतना पता है कि सिर्फ इबादत करके भी सब लोग जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक दिल साफ ना हो। इब्लीस एक किरदार समझ लीजिए अपने समझने के लिए, कि जो अल्लाह के आगे बहुत झुकता था। शायद ज़मीन के टुकड़ों पे उसने हर जगह सजदे भी किए हों, लेकिन जूं ही उसके सामने एक आदम आ गया उसने इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग आज इबादत के जोम में बहुत नेक हैं, गट्टे भी पड़ जाते हैं, मेहराब भी है, लेकिन इंसानों से ताल्लुकात में बिगड़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इल्म की बिना पर आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, इबलीस ने सजदे से इनकार कर दिया। वजह क्या थी? हसद और तकब्बुर। दिल में आदम के लिए ग्रज था। ये एक रह जाता ग्रज लोगों में शैतान आज भी डालता है, जो लोग एक जैसा काम कर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम पेशा दुश्मन हमेशा। तो इबलीस का ये सारा मामला आपको मुझे यहाँ क्या बताता है, कि अल्लाह ने इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो उसके साथ ही एक दुश्मन भी भेज दिया। अगर हम सिर्फ इतनी बात करके देख लें तो ज़रा सा तवज्जो दीजिए, इबलीस आदम अलैहिस्सलाम को अगर सजदा करता तो ये किसको सजदा था? ये अल्लाह के हुक्म को सजदा था। अल्लाह ताला ने आदम और इबलीस के इस किस्से में जो बात आपको मुझे दी है वो क्या है, दुनिया का इल्म आदम के पास था, अल्लाह ने दुनिया में मौजूद चीज़ें और जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की थी वो आदम को बता दी, फरिश्तों को उन चीज़ों से कुछ लेना ना देना। नतीजा क्या निकला कि वो उन चीज़ों को नहीं जानते थे। आज इस दुनिया में वही लोग कामयाब होंगे जो दुनिया का इल्म भी लेंगे और दीन का इल्म भी लेंगे। अब जब नेमत मिलती है ना तो आजमाइश भी है। अल्लाह ने जन्नत दे दी और साथ ही एक पाबंदी लगा दी, वला तकरबा हाजिह शजरा, आदम और हव्वा तस्निया के सीगे हैं, ड्यूल है, कि आप दोनों इस दरख्त के करीब मत जाइएगा वरना क्या होगा, फतकू ना मिन जालिमीन, आप जालिमों में से हो जाएंगे। यानी जन्नत में तमाम नेमतों के साथ साथ कुछ पाबंदियां लग गई। इसको शजरे ममनुआ कह लीजिए, प्रोहिबिटेड ट्री कह लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि आज ऐसा नहीं होगा। हम अब जिस जन्नत में जाएंगे उसमें कोई शजरे ममनुआ नहीं। अल्लाह ने इस दुनिया में चंद चीज़ों को हराम करार दिया, आगे आ रही हैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। पूरी शरीयत में सिर्फ चार चीज़ें हराम हैं, सब कुछ हलाल है। असलुल अशिया इबाहतुन, चीज़ें अपनी असल के अतबार से हलाल हैं, इल्ला ये कि कुरान सुन्नत की कोई नस उस पर मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को उस जन्नत में डाल दिया और कह दिया कि इसके करीब ना जाना वरना फतकू ना मिनत वालिमीन, तुम जालिम हो जाओगे। इससे पता चला कि अल्लाह की नाफरमानी अपने ही नफ्स पे जुल्म है। और असल में ज़मीन पर होने वाले इम्तिहान का एक तजुर्बा था ये, कि जन्नत में इतना कुछ अल्लाह ने दिलवा दिया तो उसकी मौजूदगी में इसे एक दरख्त की क्या हैसियत है। अच्छा अगर इधर मैं ये बात करूँ वो दरख्त कौन सा था, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने पिछले इल्म की बुनियाद पे कहेंगे वो गंदम का दरख्त था। तो माजरत है, मैंने तो आज तक दरख्तों पे उगती गंदम नहीं देखी। वो कुछ भी था, आपको मुझे इससे क्या लेना। अपना जहन बनाइए अमल वाला, इस साइड की बातों को छोड़ दीजिए। इन बहसों में पढ़कर हम अपना वक्त क्यों लगाए, बस एक सिंबॉलिकली अल्लाह ने किसी चीज़ से रोक दिया। अल्लाह टेस्ट करना चाहते थे कि भला क्या होता है, और फिर ये किस्सा हम आगे जाके पढ़ेंगे सूरत अलाराफ में, कैसे मुखलिस बन के अपना बन के कस्में खा खा कर इबलीस ने आदम और हव्वा को बहकाया और भुला दिया। फनसी आदम फ अज़ल्लहुम शैतान, बहका दिए इन दोनों को। देखिए यहाँ सारे सीगे तस्निया के, ड्यूल के है ना। फ़ज़ल्लहुमा, दोनों को शैतान ने बहका दिया। कैसे? मुसलसल वसवसे डाले। आज भी देखिए जो हासिद होता है ना, वो जलता कुटता रहता है, हर वक्त उसके दिमाग में यही होता है। चाहे वो दो दोस्तें हों, दो साथी, दो ताजिर, इवन बाज दफा दो दीन का काम करने वाले भी एक दूसरे से हसद महसूस करते हैं। कभी भी ऐसा हो तो औज़ु बिल्लाह पढ़िए। ये शैतान का ट्रिक है वसवसा डालना। इस पे ज्यादा बात सूरत अल अराफ में होगी, 8 पारे में। लेकिन जू ही वसवसा डाला क्या हुआ, उसने आदम और हव्वा को भुला दिया अल्लाह का हुक्म। क्योंकि बादुकुम लिबादिन अदु, दुश्मनी कर गया आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस और इनकी औलाद एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और अब क़यामत तक के लिए औलाद आदम एक दूसरे की दुश्मन है। इंसान इस दुनिया में अपना दुश्मन साथ लेकर आया। और असल में जो हमारा आपका भी इम्तिहान है ना, वो ये है कि शैतान को अपना दुश्मन समझे। अदुव्वु मुबीन के लफ्ज़ है कुरान में, खुला दुश्मन, ढका छुपा वार नहीं करता। देखिए जो पीठ पीछे वार करता है वो भी खतरनाक है, लेकिन जो सामने खड़ा होकर कहता है घर से निकलो तो सही, खड़ा हूँ मैं तुम्हें पकड़ने के लिए, बाहर निकलो तो सही, मैं ये कर दूंगा, तो क्या आप उससे प्यार करेंगे? क्या आज हम वाकई शैतान को अपना दुश्मन समझते हैं? खुद से सवाल कीजिए। क्या आपकी मेरी ज़िंदगी में शैतान का लफ्ज़ जो है वो हकीकत में एक दुश्मन के तौर पे आता है? हम तो कभी कभी अपने बच्चों को कहते हैं बड़ा शैतान है, ये बड़ा शरीर है। मत कहिए। देखिए जिससे दुश्मनी होती है उसका तो नाम लेने को दिल नहीं कर रहा होता। तो शैतान ने यहाँ तक क्या किया, अगर मैं आप पूरी इस कहानी को समअप कर दूं, कि अल्लाह ताला ने आदम को इज्जत दी, फरिश्तों को झुकाना एक किस्म की इज्जत दिलवाना था, इब्लीस ने अपने अंदर के हसद की वजह से इनकार कर दिया, अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत दी और जन्नत में जाने के साथ साथ एक छोटी सी पाबंदी भी लगा दी, इब्लीस वसवसे के रास्ते आदम और हव्वा को बहकाने में कामयाब हो गया और उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया। ये किस्सा आगे आएगा। सारी जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ अगर सिर्फ ये किरदार है ना तो वहाँ आपको इससे अगला भी दिखेगा और 30वें पारे तक चलता जाएगा ये किस्सा इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। अब जूँ ही दरख्त का फल चखा, जन्नत का शाही लिबास उतर गया। आज एक जुमला बोलने की इजाज़त चाहूँगी कि हराम का लुकमा पेट में जाते ही जिस्म लिबास से आज़ाद हो गया। कल भी आदम का यही बार था, आज भी यही बार है। आदम की ख्वाहिश क्या है कि इंसान के पेट में किसी तरह से हराम चला जाए, चाहे वो ज़ाहरी हराम हो, वो ढका छुपा हो। और जूं ही पेट में हराम जाता है उस बंदे की हया ख़त्म हो जाती है। कल से लेके आज और क़यामत तक यही असूल है। अब यहाँ आदम और हव्वा के लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा इसके बाद, लेकिन उनकी फितरत, वो जो बंदे की फितरत है वादा अलस की सूरत में जो अल्लाह से वादा बंदे ने किया हुआ है वो सामने आई। और सूरत अल अराफ में पता चलता है कि वो फौरन जन्नत के पत्ते जो थे उनसे अपने जिस्म को छुपाने लगे। किसने बताया? इससे पता चलता है हया फितरत में है। हया के बगैर इंसान बिल्कुल बेकार है। हया और हयात दोनों का मादा एक ही है। जिंदगी और हया, हयात एक ही चीज़ें हैं। दोनों ने जब दरख्तों के पत्ते अपने जिस्म पे चिपकाए, हालांकि उन्होंने सूरत नूर नहीं पढ़ी थी, सूरत अल अराफ नहीं थी, उनको नहीं पता था कि अल्लाह इस लिबास के मामले में क्या कहता है, लेकिन आज भी एक न्यू बॉर्न बेबी को भी आप ऑब्जर्व करके देखिए तो वो भी बेलिबास होते हुए अपने आप को खींचता है। ये माएँ हैं जो अपने बच्चों की हया कम करती हैं। बच्चों को बचपन से ही दूसरों के सामने कभी भी चेंज ना करें। अच्छा, अब क्या हुआ? एहसास शुरू हो गया। फताब अलै, अब आदम और हवा को पता चल गया कि ओहो, हमने तो नाफरमानी कर दी। और फिर अल्लाह ने सिखा दी वो दुआ जो आप सूरत अल अराफ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। वो कैसे पढ़ी, कितनी दफ़ा पढ़ी, तस्बीह पे पढ़ी, गिन गिन के पढ़ी, कुछ नहीं पता। बस एक बात पता है, शर्मिंदगी के एहसास से पढ़ी। अल्लाह ने क्या किया? फताबा अलैहि, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, क्योंकि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो है ही तौबा कबूल करने वाला, वो है ही मेहरबान। यानी अल्लाह की रहमत की बिना पर गलती माफ़ कर दी। और अल्लाह की ज़ात जो है वो बंदे की तौबा कबूल करने में बहुत तेज़ है। अब यहाँ से ज़रा सा बात समझिए कि जब आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, तो फिर अब उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होना चाहिए था कि दोबारा जन्नत मिले। देखिए ना, बच्चा तंग कर रहा है, माँ की बात ही नहीं सुन रहा, खिलौने के साथ मगन है, तो बिल आखिर माँ आती है और उसका खिलौना पकड़कर ऊपर अलमारी में रखती है और कहती है चले जाओ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। फिर बच्चे को एहसास होता है मैंने माँ को तंग कर दिया, माँ को दुखी किया, फिर वो आके माँ से लिपटता है। यही अल्लाह भी चाहता है, तुमसे गुनाह हो तो बड़े बड़े ना बनो, अकड़ो नहीं, मेरे साथ लिपटो, मेरे से बात करो, तौबा करो, माफी मांगो। अब जब माँ को बच्चे पे प्यार आता है, माँ कहती है जाओ मैं नहीं अपना राज, मैं तुम्हें माफ किया, तो जब बच्चा देखता है कि माँ जरा सी नरम हो गई, तो आगे से क्या कहता है, अच्छा मामा अब आप मुझसे नाराज नहीं है, तो वो खिलौना तो अब दे दे। कुछ ऐसा ही अंदाज है कि अल्लाह ताला से आदम ने भी कहा होगा कि अल्लाह ताला जब आप नाराज नहीं है तो फिर आप हमें ये जन्नत दे दीजिए, तो फरमाए आपने कुल ना भी तुम इन हाज मिया फयाती हदन फमन तबी हदा या फला खौफ नलहिम वला हम यहसनून। आप तो खैर तुम जाओ, फ़ैम मयाती अन्ना को मिन, ये है असल में वो चीज़। आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लफ्ज़ हिदायत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर आपको सूरत नास तक पूरे कुरान का एक मौजू देखेगा हिदायत की तलब। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान दुनिया में हिदायत पाए, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब नहीं, अब ट्रैक चेंज हो गया। पहली दफ़ा की जन्नत जो थी ना, वो ट्रायल पे थी, वो एक कह लीजिए कि जैसे आप कोई घर बुक करवाते हैं किसी जगह, कोई बिल्डर है वो आपको एक नक्शा दिखाता है, यहाँ घर होगा, यहाँ ये होगा, वो होगा, वो पूरा एक मॉडल दिखा देते हैं आपको, लेकिन जब आप ओके करते हैं फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट्स देंगे, पैसे देंगे, और 2-3 साल के बाद आपको वो घर मिलेगा। अब जन्नत में जाने के लिए शर्त क्या हो गया, तबिया हुदाया फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर ना खौफ होगा ना गम होगा। लिखिए टेंशन फ्री जिंदगी, ईमान लाने पर कोई गम और खौफ नहीं रहेगा, यानी अब जो जन्नत मिलने वाली है उसमें कोई खौफ नहीं होगा। यानी आदम का अब दुनिया का ज़मीनी सफ़र तय हो गया, शुरू हो गया, अल्लाह ने आदम और हव्वा को दुनिया में भेज दिया। अब वो कहाँ भेजा, वो कहाँ मिले, वो कितने साल रोते रहे, ये लोक दास्तान थोड़ी है। बस अल्लाह ने तौबा कबूल करके दुनिया में भेजा। कुछ लोग कहते हैं ना खाते दरख्त का फल ना चखते, मज़े से हम भी जन्नत में रहते, सवाल आता है ना दिलों में, तो वो पहला जुमला याद कर लीजिए, व इस काल रब्बु का लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। आदम तो फिल अर्द बनाई जमीन के लिए गए थे, ये अल्लाह सुब्हान तआला का क्रिएशन प्लान था, तो उसका नतीजा क्या निकला कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेज दिए। तो यहाँ पे क्या पता चला कि आदम को पैदा तो जन्नत के करीब किया गया, या जब पैदा किया गया तो जन्नत दी गई, लेकिन वो ट्रायल था, वो एक किस्म की उस जन्नत की तलब थी। अगर इतने किस्से पे बात करें ना, तो आदम अलैहिस्सलाम से जो विरसे में हमें चीज़ें मिली हैं ना, बींग अ चाइल्ड, आदम के बच्चे होने के नाते, गुनाह पे शर्मिंदगी, तौबा करना, हया, इल्म हासिल करना, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वो सारा कुछ डाल दिया जिसको आज की जुबान में आप कहते हैं कि कंप्यूटर में उनके डाटा में फीड इन कर दिया, जब वक्त के साथ साथ बाहर निकल रहा। आज जितने भी उलूम हैं, इवन आप देखिए कि आज लेटेस्ट जो इल्म है वो सारे आप देख ही रहे हैं कंप्यूटर की जुबान में, और कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई और इंजीनियरिंग की कितनी किस्में हुई, ये ऐसी जैसे कली वक्त के साथ खिल रही है। कियामत तक इंसान मुख्तलिफ किस्म के उलूम हासिल करते रहेंगे। आज इस दुनिया में वही कौम वही मुल्क कामयाब होगा जो इल्म से ताल्लुक़ जोड़ेगा। हम मुसलमानों को इसमें एक पैगाम था कि अगर तुम दुनिया के इल्म के साथ भी जुड़ते और वही के इल्म के साथ भी जुड़ते जिसको आप दीन और दुनिया का इल्म कहते हैं, सेक्युलर नॉलेज जिसको लोग कहते हैं या रिलीजियस नॉलेज कहते हैं, असल बात यह कि कोई इल्म भी सेक्युलर नहीं होता। हमारे दीन इस्लाम की पहली सीढ़ी इकरा बिस्मी रब्बी का पढ़िए, अपने रब के नाम के साथ। क्या पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, नहीं, साइंस पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, एनाटॉमी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, यानी ये रुकू आपको मुझे एक मैसेज देता है, अपने बच्चों को बताइए। कुछ बच्चे कहते हैं हमें दुनिया का नहीं पढ़ना, सिर्फ दीन सीखना है, तो भाई जब आप दुनिया का नहीं पढ़ेंगे तो आप दीन कैसे सीखेंगे। मुझे उर्दू ना बोलनी आती होती तो मैं कैसे बोलती, आपको मैथ नहीं आता तो आप विरासत के अहकाम कैसे जानेंगे, इकोनॉमिक्स मुस्लिम बच्चे कैसे चलाएंगे, आप मुस्लिम बैंकिंग कैसे शुरू करेंगे। तो असल बात यह है कि दीन और दुनिया का इल्म दो आंखों की तरह, जब ये दोनों आंखें खुलती हैं तो दुनिया की हकीकत समझ आती है। जब तक मुसलमान इस हकीकत को पहचान गए थे, और 1,000 साल तक इस दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत रही थी, उस वक़्त तक अल्लाह ताला ने उम्मते मुस्लिमा को पूरी दुनिया में सूरज बना के चमकाया था। अल्लाह के नबी से लेकर पूरी 10 सदियां मुस्लिम रूलर्स थे, इस्लामिक रूल था। हमारे पास सबसे खूबसूरत चीज़ इस वक्त कुरान सुन्नत के साथ हिस्ट्री है। तो मैं चाहूंगी कि अपने बच्चों को भी और खुद को भी हिस्ट्री से मुतारफ करवाइए, ताकि हमारे ऊपर इस वक्त जो गिल्ट है, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा डाउन फील करती है, क्योंकि हमारे बच्चों ने बातें ही सुनी है। तो आप दीन और दुनिया का जब इल्म देंगे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या आज लोग सारे के सारे पीस के लिए नहीं जीते? आज कितना डिप्रेशन है, कितनी स्ट्रेस है, उसकी वजह कि हमने वही का इल्म छोड़ दिया। या तो सिर्फ दीन का इल्म, दुनिया के इल्म की तरफ झुक गए, या सिर्फ दीन, दुनिया या दीन। एक तरफ मिस्टर है और एक तरफ मुल्ला है, और दोनों एक दूसरे को बुरा कहते हैं। इन दोनों को सलाम दुआ करा दीजिए ना। दुनिया की चीज़ों के बगैर आप दीन फैला सकते, और ना सच्चे दीन सिखाने वालों के बगैर आप अपने पैसे के जरिए दुनिया में इस्लाम ला सकते हैं। दीन और दुनिया का खूबसूरत इम्तिजाज बनिए, अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। और इसका ऑपोजिट क्या है? वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन्नारी हुम फीहा खालिदून। जिन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया और हमेशा आग में रहने वाले, यानी जो हिदायत की पैरवी कर लेगा वो तो बेखौफ होके जिएगा, और इसके बगैर तो सिर्फ अंधेरे हैं। क्या पता चला कि आज भी दुनिया में कामयाब होने का बेहतरीन नुस्खा क्या है? कि दुनिया में अल्लाह की दी हुई रहनुमाई से फ़ायदा उठाया जाए। अब इतनी बात को अगर मैं समअप कर दूँ तो हम किस मुकाम पे पहुँच गए? सूरत बकरा की पहली 39 आयात में हमने 4 किस्म के इंसान भी पढ़ लिए, हिदायत के एतबार से। इंसान का मकसद तख्लीक भी पढ़ लिया, मक्की दौर का पूरा खुलासा, और फिर हमने दुनिया में पहले इंसान की कहानी भी पढ़ ली।